जैसे सच्चे ज्ञान का उदय हमें अपने अज्ञान के बोध से होता है, वहाँ से प्रारंभ होता है, वैसे ही शक्ति का उदय अपनी अशक्तता के बोध से होता है। अशुपति महान योगी हैं, तपस्वी हैं, वह सब कुछ उन्होंने आत्मसात कर लिया, संसिद्ध कर लिया, जो अनेकों ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है, किंतु फिर भी वह इतना जानते हैं कि यह सब कुछ प्राप्त करके भी जो संसार की समस्या है उसका समुचित समाधान उनके पास नहीं है। बड़ा विरोधाभास लगता है, किंतु ये सत्य है। मनुष्य अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो ये सोचता है कि वो सबको बदल लेगा और प्रयास करता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो जानने लगता है कि वो अगर अपने को बदल ले तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। श्री अरविंद से जब किसी ने पूछा कि माताजी के आने से आपके योग में क्या अंतर आया, श्री अरविंद कहते हैं इसके पहले मैं अपनी सहायता कर सकता था, स्वयं को तो रूपांतरित कर सकता था, पर मैं अन्य लोगों की सहायता नहीं कर सकता था। बहुत बड़ी बात है, खासकर जब हम लोग अपने अंदर अपना मूल्यांकन करें कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बदल देंगे, इसको बदल देंगे, उसको बदल देंगे, संसार बदल देंगे। वहाँ श्री अरविंद कुछ ऐसा बचा नहीं है उन्होंने जो तपस्या में रियलाइज़ ना किया हो, और वे ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम बदलने का प्रयास ना करें, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विफल प्रयास भी हमारे अंदर साधन को इंक्रीज करता है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, इवन इफ दाउ नोएस्ट दैट दाउ वुड्स फेल, स्टिल यू मस्ट वर्क, बिकॉज थ्रू वर्क द मीन्स इंक्रीज टू दी। तो ये दूसरा विरोधाभास है कि इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम प्रयास नहीं करेंगे, प्रयास करना चाहिए। प्रयास जब हम करेंगे तो धीरे धीरे भगवान हमें उस दिशा में मोड़ देंगे जहाँ हमें वास्तव में साधन मिलेंगे। और तीसरा कि प्रयास की दिशा क्या हो। हम लोग बाहर से बाहर को बदलना चाहते हैं, लेकिन भगवान का तरीका कुछ और है, वे अंदर से अंदर को बदलते हैं और उसके परिणाम स्वरूप बाहर वो परिवर्तन रूपांतरण परिलक्षित होता है। तो श्री अरविंद या यहाँ देखें तो अशुपति, उनके अंदर ये अभिप्सा है जो हर 15-16 साल के नवयुवक के अंदर होती है, शायद उसके पहले ही होती है, होनी चाहिए कि ये संसार बदले। जो ये सोच के चलते नहीं संसार जैसा है अच्छा है, मैं भी इसी की तरह कुछ बन जाऊंगा, तो वो वास्तव में तैयार नहीं है किसी उच्चतर सत्य के लिए। तो ये अभिप्सा जरूर होनी चाहिए कि चीज़ें बदलें, लेकिन वो बदलने की दिशा क्या है वो हम यहाँ देख रहे हैं। अशुपति भी इसी अभिप्सा को लेकर अपनी योग यात्रा प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो बाहर से नहीं बदलते हैं चीज़ों को, लॉ के द्वारा, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल चेंज, इसके द्वारा नहीं, वो अपने ही अंदर उस शक्ति, उस चाबी को ढूंढते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल पावर है जो बदल सकती है चीज़ों को। और यही ढूंढते ढूंढते वो सृष्टि के सीड्स और उसके पार जाकर माँ जगत जननी उनका दर्शन होता है और उनके सामने वे प्रस्तुत करते हैं अपनी अभिप्सा। और सब कुछ सुनने के बाद माँ का तथास्तु जिस पर हम रुके थे, ओ स्ट्रॉन्ग फोर रनर आई हैव हर्ड दाई क्राई, वन शेल डिसेंड एंड ब्रेक द आयरन लॉ। दो प्रकार से भगवान संसार में कर्म करते हैं, एक है कि वे मानव रूप नहीं धारण करते और अपने परम धाम में रहते हुए संसार में अनेकों अनेकों विभूति, संत, ऋषि, मुनि, उनके द्वारा वो अपना कार्य करते हैं, वो एक प्रकार का काम है, इसकी बात गीता में भी चर्चा हुई है। लेकिन जब उनको कुछ महत परिवर्तन लाना होता है, मात्र छोटा मोटा रिवॉल्यूशन नहीं, संसार के अंदर एक मूलभूत परिवर्तन, तब उनको स्वयं ही उस कठिनाई को अपने अंदर धारण करना होता है और तभी वे उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर माँ भगवती आश्वासन दे रही हैं, साथ में संकेत कर रही हैं कि तुमने जो मांगा है वो मैं यहां से नहीं कर सकती हूं, उसके लिए तो मुझे स्वयं मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। तो एक पंक्ति में श्री अरविंद ने अवतरण के रहस्य को भी उद्घाटित कर दिया है। माँ एक जगह कहती हैं, एवरी टाइम द डिवाइन टेक्स ऑन ए ह्यूमन बॉडी इट इज विद द विल टू ट्रांसफॉर्म मैटर, अल्टीमेटली जब तक वह नहीं रूपांतरित होता ये जड़ तत्व, तब तक धरती पर दिव्य जीवन हम लोग नहीं जी सकते, कोई ना कोई रूप में इम्परफेक्शन जुड़ा रहेगा। वन शेल डिसेंड एंड ब्रेक द आयरन लॉ, आयरन लॉ क्या है, इसी जड़ता का पाश, ये आयरन लॉ है, उस जड़ तत्व का अपना नियम है, वो